इसके लिए साधन करेंगे, किंतु वो साधन करने की देरी नहीं, बस वो प्रभु के प्रति सत्संग के द्वारा उनके पीछे हमारे देह में आ गया, ऑटोमेटिक प्रीति लग जाएगा भगवान के प्रति, देर नहीं लगेगा। इसलिए जिससे प्रेम भक्त मैत्री, और भक्त के साथ कैसे मित्रता पूर्ण व्यवहार, कैसे मित्रता, कहो हमारा और तो इस विपद से बचाना और कोई बांधव नहीं है। क्या बांधव, हरिकथा सुनाते हैं, हरिकीर्तन सुनाते हैं, और भजन के लिए हम उनको सुजोग प्रदान करते हैं, हम उनको कितना उपकार है। आज यदि सभी वैष्णव लोग यदि नहीं होते तो एक व्यक्ति सब काम करके कब भजन करेगा, कब उनको सुजोग मिलेगा। सब लोग हमारे बांधव है, सब कुछ आत्मा के हमारा साथी है। अब भगवान क्या करते हैं, जैसे व्यक्ति होगा ठीक उनके मित्र भी ऐसे दिखा देंगे, संघ के द्वारा साथी के द्वारा उनका परिचय मिलता है। प्रभु क्या करते हैं, बड़े सुंदर बड़े सदस्यों के संग व्यक्ति कराते हैं। किंतु ये मैत्री का तात्पर्य जो दिया है क्या, जो मृत्यु से प्राण करने के लिए, उद्धार करने के लिए, बचाने के लिए जिनमें साथ शक्ति है वो है मित्र। मित्र के साथ जबकि हम प्रीति युक्त व्यवहार करते हैं तो उनको बोलते हैं मैत्री। अभी बताएं मृत्यु क्या है, असल में मृत्यु हम अपने जो मनुष्य जन्म आदि जन्म है, सबसे पहला जन्म है, इसमें सद्बुद्धि देकर के हमें भगवान के चरणारविंद की तरफ जो ले जाने वाले हैं। नहीं तो क्या होता है, हमारा यदि ऐसे मित्र मिले जो भोगों में ले जाने वाला, तो उनको होता है सजना का दोष शुद्ध काय दुष्संभ है, वो हमें ले जाएंगे तो सूर्य से आप जो में भक्ति उसके फल स्वरूप। अगर ये क्या किया, असल में मृत्यु चर्चा हमारा निम्नगामी रास्ता से उठा करके प्रभु के चरणारविंद की तरफ ऊपर ले जा रहे हैं, हमारा भजन को हल्का करके आगे ले जा रहे हैं, असत्य घटा कर। तो बता रहे हैं इसके लिए पुराणों में अच्छे से उपखंड दिया, कहीं एक जगह में मैं पढ़ा किताब इसमें या किस चीज में मैं पढ़ा, क्या लिखते हैं कि दो मित्र थे, तो दोनों मित्र बचपन में क्या करते, मंदिर जाने को मांगता, तो एक मित्र बोलते चल भाई मंदिर जाएंगे, वहाँ सत्संग हो रहा है कथा सुनेंगे, एक बोलता है तेरा रोज का मंदिर मंदिर लगता है, एक दिन पार्क में भी तो चल, एक दिन नदी किनारे घूमने से चल, मंदिर में घुटन है छोटा सा जगह है बैठना है, बाबा जी डपली बजाता है, अरे जो बैठ रहे थे क्या बोलते हैं पता नहीं, कुछ दुख समझ में तो कुछ आता नहीं, अरे चुआ नहीं मिला है थोड़ा सा सुख कर देख सुन ले दुनिया को, बोलते भैया तेरी मर्जी तू जा मैं तो नहीं जा रहा, तो तू नहीं जाएगा नहीं जाएगा, मैं तो नाइट क्लब नहीं जाऊँगा, अब वहाँ तो नाइट क्लब नहीं है, वहाँ तो कुछ और बातें हैं, मैं जाऊँगा तू जा। तो वो जा रहे थे बार बनीचा के घर, और ये मंदिर है, मंदिर आते ही दरवाजे में आया और कांच का टुकड़ा पड़ा था, कि क्या था उसने देखा नहीं, बस पैर कड़ा कस करके बिल्कुल, तो मंदिर में पैर कभी जूता चप्पल पहन के टुकड़े आते नहीं, बस कस करके टुकड़े खून से रक्त करना चाहता था, ले करके उनको अस्पताल में भर्ती कर दी, चिकित्सा लेने दी थी। और वो क्या किया, वो जो बार बंदी का घर रात भर वहाँ तो रहा, सुबह निकलते समय उनको इतना बड़ा मोहर की थैली मिल गया, और वो सुबह थैली को देख चुपचाप चलाया आकर घर में देखो बाप है 10,000 की स्वर्ण मोहर की थैली है, तो देख और सुना मित्र का तय कर दिया, सुबह गया देखने देख देखो ना बोल रहा था माफी मांगता है मंदिर जाता है, मंदिर गया तो देख तय करते हुए क्या कर दी, अब 6 महीने में ठीक हो जा, अब देख मेरे को 10,000 स्वर्ण मुद्रा मिल गया और खूब भोग करा जवानी की लाभ उठाया, अब वो कुछ जवाब ना दे उनके मित्र, जब जवाब नहीं दिया धीरे धीरे करके ठीक हुए, तो अब तो मंदिर नहीं जाएगा ना, बोल भैया चलो दोनों जगह हम लोग ज्योतिषी के पास गए, तो दोनों ज्योतिषी के पास गए, ज्योतिषी देख रहे हैं भाई आप बच कैसे गए, आपका तो मृत्यु था, कैसे बचे हैं? बोले मैं उस दिन मंदिर जा रहा था और जाते जाते मेरा पैर ही कट गया। बोले ये तो सुई से आपका समस्त निकल गया, जैसे सुई से किसी को चोट लग जाता है, बहुत हद की बात है। और उसका हाथ देखा, बोले भाई आप तो महाराज बनने वाले थे, आपका तो बड़ा भाई जोग था, आपका तो बहुत जोग था, तो मुझे तो झूठ बोल नहीं सकता। तो बोले आप उस दिन कहाँ थे? तो बार बोली टाइम कर दिया, ओ देखो उसके संग के प्रभाव से सब बर्बाद हो गया, नहीं तो आपको तो उस दिन राजनीति मिलता, अर्थात इतना बड़ा विभव आपको मिलता, तो क्या कुछ मिला आपको? मुझे 10,000 स्वर्ण मुद्रा मिला। तो क्या किया? तो मैं अपना सब पार्टी किया, दारू पी करके, मांस खा करके और इधर उधर करके, नाच गान बजना और बागवंटाओं को भी दिया, वहाँ का सबको देकर के मैं आज महीना भर में मैं सब बर्बाद कर। अच्छा अब देखो ये सब जो बात विचार देते हैं, बताते हैं कि मित्र आसन्न मृत्यु से प्राण करने वाला है वो ही मित्र, नहीं तो दुनिया में कोई मित्र नहीं है। अब दोनों मंदिर आते हैं, आते 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 बहुत दिन, और बोलता है देख तू मंदिर जा, मैं तो कभी जाऊंगा नहीं, तू विश्वास करता है ढोंगी बनता है बन, मैं जाऊंगा नहीं। ओ अच्छा सर्विस मिल गया, ये सर्विस करता है, अरे ये भी अपना सर्विस करता है, फिर मंदिर सुबह शाम जाता है, करते 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 55-60 साल के दोनों का उम्र हो जाता है। तो दोनों क्या करते हैं अब एक दिन, अब इन लोगों के दोनों का मिल नहीं, क्यों? कोई वो सर्विस करता है, कोई ये सर्विस करता है, इसने वो जो जिसका धन संपत्ति मिला था उस मित्र ने घर मकान बनवाया, लड़की लड़का शादी कर दी और खूब सुंदर माहौल बनवाया, इसने क्या किया जीवन भर कमाया, बच्चों का तो देख पालन पोषण किया किंतु अपना साधु संतों की सेवा भी करते रहे, भजन भी करते रहे, सुख से दिन बीते, कोई दुख नहीं। अब रिटायरमेंट आया, ये अपने मंदिर जाते हैं, दिन अधिकांश समय मंदिर बीतता है, कभी घर जाते हैं कभी नहीं जाते हैं। एक दिन सुना हमारे मित्र जो है बड़े अस्वस्थ हैं, बड़े बीमार हैं और मृत्यु से जमे थे हुए हैं। तो अरे अभी तो उम्र कुछ हुआ नहीं, 60 साल उम्र कुछ भी उम्र नहीं, ऐसा कैसे हो गया? तो देखने के लिए गए, जाकर के क्या देखते हैं, बड़े महल हैं सोने का अट्टारी, किंतु नीचे कूड़ेदानी के पास में जीना के नीचे एक वो बिछा हुआ है कंबल, उसी के ऊपर पड़ा हुआ है, सांस ले रहा है घर 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 करके, मक्खी भिन कर रहा है, ट्रैक्टिक किए हैं पड़े हैं चारों तरफ में, और एक गिर पानी भी नहीं, मिट्टी कूलर सामने पड़ा हुआ है, पानी पीने की भी नहीं है, और कभी सांस आ रहा है कष्ट के साथ में। तो ये ऊपर गए थे जाकर पहले पूछे जीना चल गए मित्र है तो किसी ने उनसे बात नहीं, नौकर से पूछा रामू को हमारा वो मित्र कहाँ है, तूने उंगली से दिखा दिया वो देखो, तो नीचे गया जाकर ये हालत में दिखा, दिखकर बोला बहुत देर बैठने के बाद में देखा आँख खोला तो दोगुन आंसू आ रहा है, बोले इतना कष्ट है आपका है? उठा करके लेकर के और चलो मैं चिकित्सा कराता हूँ, ले गए भगवान का चरणामृत दिया और चिकित्सा कराया, जब थोड़ा स्वस्थ हुए तो बोले मित्र ऐसे कैसे हो गया, इतना बड़ा हवेली लड़का तुम्हारा बड़ा नौकर चाकर या तुम्हारा इतना व्यवस्था वैभव ऐसे कैसे हो गया? तो बोलता है कर्म ऐसा है, मेरा कर्म खराब है। बोला अच्छा मित्र ऐसा करो तुमको मैं कुछ मोहर दे देता हूँ और एक थैली दे देता हूँ, घर जाना और घर जाके वहीं बैठना, बैठ करके हमने थैली में से और माला की झली जैसे झली तोला में देना और उसको पटक देना, जो लड़का निकल कर ऑफिस जाएगा और फिर उसको लड़का देख नहीं पाया, सब इधर उधर सिमट देना, इधर उधर करके देखे नहीं, आपका पास है ही नहीं, देखे नहीं, फिर देखना जो होता है। किंतु किसी बात मत सुनना, मैं आऊंगा दूसरे दिन। वो ले गए, इनको देखते सबका चूर हो गया। फिर आ गए जी, बैठी नीचे बैठ करके पैसे पैसा मिलता है, वो पैसा को झड़ा दिया, लड़का जा रहा है गट 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 करके सूट बैट पहन करके, सब नीचे गिरे थे सांसों को बटुर करके अंदर कर रहे हैं, सोने का मोहर है, इधर से देख उधर कोई देखने आया किसी कर रहे हैं। लड़का उल्टा चला गया ऊपर, जाकर के माँ से बोल रहे, माँ इस चीज़ से बोलते हैं, अरे ये क्या हो गया, अरे इसने जीवन भर जो कुछ कमाया दिया तो कुछ भी नहीं, इन्हें बंटवार करके दी किंतु कुछ भी नहीं दिया, सब तो इनके पास है। अरे वो कंबल के नीचे खजाना भरा हुआ है सब, सोने का मोहर है, इतनी मोहर है, इन्हें क्या किया, सिमट करके रख करके, फिर जैसे उतर कर बो लग गया था, बो रहनी आ रही है, फिर गिरा दिया, फिर गिरा करके सिमट किया। तो बोलते ओ सोने तो का बहुत मोहर है, दिया तो कुछ नहीं। मम्मी को बुलाता हूँ, मम्मी को बुलाया तो उन्होंने ना तो वैसा कर दी, तो क्या करें, नौकर को जा रामू बाबू से कहो, बाबू यहाँ को कष्ट पाओगे, आपका घर का सवे भाई हो गया है और खाट पालन बिछ गया है, आप ऊपर ही चलो, यहाँ को कष्ट करोगे। तो वो फिर झुंझुन झुंझुन कर रहे हैं, उसको पिला रहा है, बोले रामू अब तो एक दो दिन रह गया, अब क्या करूँगा। इतने बेटा पिताजी जो कुछ गलती हो गया, मैं तो आप ही की बेटा हूँ, क्षमा कर देना पिताजी, चलो पर चलो। देखो पिताजी हमने हम अज्ञानी हैं, नादान हैं पिताजी, ऊपर चलो। वो रानी आई, पिताजी आओ ऊपर चलो। तो किसी ने सुना नहीं, चुपचाप बैठे रहे। दूसरे दिन मित्र आए, तो कैसा मित्र, कैसा रहा, ओ पप्पू बड़ा प्यार करते हैं, बहुत प्यार करते, और हो गई यहाँ तो नहीं, अब नहीं, तो क्या करोगे, अब बात सुनोगे मेरा, मैं सुनेंगे, तो चलो मेरे साथ मंदिर ले गए आश्रम में। आश्रम में जाकर के बोले अब साफ सुथरा होकर के, अब प्रभु के नाम लेंगे, हैं देख तो लिया सबको, हो गया ज्ञान, तब रोने लग गए, मित्र मैं बात नहीं सुना करूंगा। अब बहू रानी सब लोग रथ लेकर के आए, बाबूजी हमारा घर में ही रहे हैं, आश्रम में क्यों रहे हैं। बहू रानी आकर के बोलती है, बाबू पिताजी मैं आपको रामायण माला पोथी गीता भागवत सब घर में खरीद देंगे, घर ही मंदिर बनेगा, हम सभी आपकी सेवा करेंगे, आपको चलना है। तो फिर मन चल गया, अच्छा चलो, मित्र नहीं है आप आश्रम से, उठा करके लेके चलिए, जाकर के एक रामायण ला दी, अरे माला ला दी, और छत पर धूप में बैठ कर के चाले का दिन भजन कर रहे हैं। तो वो बोल रहे क्या किया, अपने बेटे छोटे को ला करके गोदी में दे दी, मुझे पापा ये नाती को भी देखना, भजन भी करना, और मैं मंगोड़ी सुखाने दिया, इसको थोड़ा बंदर अंदर चिड़ियाओं से देख लेना। घर में आकर के बोलते, देखो एक नौकर रखोगे, कितने पैसे देने पड़ेंगे, और वो भी देखिए ना देखिए ममता से, आज मैं कितना काम किया बुला के ले आए, और जितने मोहर या संपत्ति वो तो मिलेगा ही मिलेगा, और बिना पैसे का नौकर भी तो मिल गया है। लड़का बोलते हैं, तुम्हारे जैसे बुद्धिमती और कोई होगा, इससे तुम्हारे मैं पूजा करता हूँ। थोड़ी देर में वो ढूंढे ढूंढते हैं, मित्र क्या कर रहे हो, फिर फंस गए मैं जल में, फिर चौरासी के चक्कर में। इतने में नाती ने गति कर दी बाबा की गोदी में, अमृत है चंदन है, हाँ क्या आनंद, बोला हा अब चंदन की खुशबू फैलने रहे हो, अच्छा करके कस के सुना करके भगवान की कथा उठा करके लेके चल दिया। बहुत लंबा किस्सा है। अब बहू अपनी स्त्री आती है रोती है, हाय हाय, जो बहू आती है वो आता है किंतु कैन में नहीं आता, पकड़ कर लेकर के जैसे जैसे हरिणाम कराने लगे, जम के दूध डर के मारे पास नहीं आ रहे। तो बताते हैं मित्र कौन है, ऐसे आसन्न मृत्यु से जो हमें उठा करके अपने भगवान के चरणारविंद में पहुंचा। उन्होंने बतलाया क्या क्या तत्व की बातें हुआ है कि ये आत्मा जीवात्मा जो है ये आपके सारा जीवन ले लिया, अभी वृद्धावस्था में भी आपके चित्तवृत्ति को नोट करके अपनी तरफ रख रहे हैं, वृत्ति के साथ प्यार दिखा करके सजना कर दो डकाई से लूटेगा है डकाई डकाई जाके एक दिन ले जाता है क्योंकि ये सारा 24 घंटा लेता है। ये नहीं एक जीवन नहीं इतना ममता हो जाएगा फिर सालाना सालाना श्राद्ध करेगा तर्पण करेगा बुलाएगा रोएगा, इससे वैष्णव की श्राद्ध नहीं होता उनको डिस्चार्ज नहीं करते। वो जहाँ गए हैं सुख से वहाँ भगवान की सेवा करे, उनको दोबारा डिस्चार्ज नहीं करते, उनको श्रद्धा भी नहीं मंत्र पुत्र कर उनको बुलाते नहीं, किंतु स्मार्ट प्रक्रिया कोई भी रहो वहाँ पे मेरे को आशीर्वाद दो, अर्थात तुम वहाँ पे कमा रहे हो मुझे दो मैं तुम्हारे लिए दूंगी, ये नहीं लेने देते। समस्त तत्व की बातें वहाँ समझाया उनको कर्म से लेकर के आखिरी भक्ति राज्य तक सब कुछ समझ में आया, सब कुछ जाकर के भजन राज्य में प्रवेश किया। तो ये इसको बोलते थे मित्रों किसी भी कीमत पर माया में जान नहीं देंगे, जो माया से त्राण करते हैं आसन्न मृत्यु से त्राण करते हैं, जो हमारा मोह से त्राण करते हैं, जो हमारा ममता से ममता को वचन रूपी कुल्हाड़ी से काट करके भगवान के सेवा में लगा देते हैं उनको मित्र कहा जाता है। इससे बताया किससे मैत्री करो, कौन हमारा मित्र है, ऐसे यदि कोई भक्त मिले उनसे मित्रता करो, नहीं तो दुनिया में किसी मित्रता करने की कोई जरूरत नहीं है। और क्या मुने कृपार अज्ञ है, सरल है, मूर्ख है, कुछ भी जानता नहीं है, उनको कृपा करना चाहिए। कैसे? भगवत प्रसाद, महाप्रसाद, भगवान के भोग लगा हुआ थोड़ा प्रसाद उनको दे दो। और क्या हरिनाम, हरिनाम कीर्तन सुना दो, उनसे कुछ भगवत सेवा के अनुकूल वस्तुएं जरूरत है तो वो भी कितना, जैसे हम लोग भिक्षा के लिए गए एक मुट्ठी आटा देता है कोई बात नहीं है, किसको लेने में बुराई नहीं है, क्यों उसमें आसक्ति नहीं है, यदि एक बड़ी उठा के देता है मत ले जरूरत नहीं है, क्यों उनकी लेने से उनको अनुजाई सुनना पड़ेगा, उनकी बात मानना पड़ेगा, वो उनके दबाव में रहना पड़ेगा, क्या जरूरत यदि हमारा एक मुट्ठी से हो जाए दस घर से मांग लेंगे, क्या जरूरत एक जन से लेने की, इसलिए अधिक ग्रहण नहीं करना चाहिए, इतना शिक्षा मिल जाता है साधुओं को इतना। तो मूढ़ों के प्रति कृपा करना, मूर्खों के प्रति कृपा करना, सरल अज्ञता अज्ञ जानता नहीं कुछ, एक मुट्ठी लाने से उनका कल्याण हो जाएगा, एक रुपया दो रुपया बहुत होता है, पहले तो हम लोग शिक्षा करते थे पांच पांच पैसे, पांच पैसा बहुत, सारा भिक्षा कर जाते कभी पांच रुपया दस रुपया हुआ तो बहुत सारा दिन में, तो उससे किसी के बंद है मुक्त पुरुष को भिक्षा नहीं है, मुक्त पुरुष को सारा दुनिया भिक्षा भी दे दो तो कुछ भी नहीं लेता, दुर्व्यवस्था की तरह खा करके खाते नहीं और पी करके पीते नहीं, देख करके देखते नहीं, ले करके लेते नहीं, उनको कुछ मतलब ही नहीं, कोई दे दिया तो कौन देने वाला, कौन लेने वाला, भगवान के चरणारविंद। इसलिए मुक्त प्रग्रह वृत्ति ऐसा जब तक नहीं आता है तब तक आसक्ति नहीं होना चाहिए, बस कृपा करना है कैसे, भगवत प्रसाद के द्वारा, भगवत कथा के द्वारा, भगवत संबंधी वस्तु के द्वारा, आसक्ति के साथ नहीं। तो अब क्या होगा, क्यों तो प्राकृत भक्त भक्ति साधक माध्यम पति शीघ्र कृष्ण वाले होंगे उत्तम, अब वो पति का भक्त होगा, मध्यम अधिकार में जब आएगा विचार करेगा, अब विचार शक्ति नहीं है अब भक्ति राज्य में प्रवेश नहीं है। जब तक सत्संग में साधुओं के प्रति भक्त को मित्रता और कृष्ण के प्रति प्रीति, मूल के प्रति कृपा, और देखियो की उपेक्षा, भक्त देखियो की उपेक्षा नहीं करेगा तब तक सब बराबर होने से नहीं होगा। पक्ष तो लेना ही पड़ेगा, भक्ति की पक्ष लेना ही पड़ेगा। बताते हैं महाराज, उदाहरण देते हैं, घर घर में लड़ाई हो गया, नहीं देश में लड़ाई हुआ, दूर देश में, तो भारत की पक्ष लेता है। और जबकि अपने एक एक स्टेट में लड़ाई हुआ तो अपने स्टेट की पक्ष लेगा, और जब अपने गांव में या दूसरे गांव में लड़ाई हुआ तो अपने गांव की पक्ष लेता है, जब घर में लड़ाई हो रहा है चाचा में तो अपने पिताजी की पक्ष लेता है, और जब माँ में बाप में लड़ाई हो जाता है तो माँ की पक्ष लेता है, और जब क्या करता है अपने शरीर में कहीं घाव हो गया, अब तो गहरी हुआ है काटना पड़ेगा, तो शरीर को कटवा के अपने बचाव करता है, और जब ये शरीर भी तंग करता है इसे छोड़ के तो अपना सुख चाहता है। पक्ष तो लिए बिना जीवित ही नहीं सकता, लेगा तो आसानी से लेगा ही लेगा। दुष्टन कह मैं किसी पक्ष नहीं लेता, निरपेक्ष हूँ, वो पक्ष तो लेता है, लिए बिना ले रह नहीं सकता, कहीं ना कहीं ममता रहेगा, ममता के बिना जीव नहीं रह सकता, किंतु ये ममता किसमें हो वो माँ भागवत में हो तो काम होगा। इसलिए बता रहे हैं पक्ष पक्ष कैसे होगा, भक्ति के साधन करते करते भक्ति के माध्यम से वो कृष्ण की कृपा से धीरे धीरे उत्तम गति में पहुंचेगा। अभी उत्तम भक्त की बात बतलाने जा रहे हैं, कैसे उत्तम भक्त होता है, उत्तम भक्त है कौन। सर्वभूते कृष्णेर भाव संदर्शन, भगवान ने सर्वभूते करण दर्शन, सर्वभूते कृष्ण भाव संदर्शन, समस्त प्राणियों में कृष्ण भाव दर्शन करता है। जैसे कल बोला ना महाराज जी, महाराज श्री छोटे छोटे लड़की आती है उनको देख कर कितना स्नेह करते हैं, तो हम सोचेंगे ओ महाराज लड़की को स्नेह करते हम भी करें, हैं होगा ना, लीला अच्छा लीला हो जाएगा, सब तो भूत की तरह सवार हो जाएगी बिल्कुल। आप महाराज जी को वो लड़कियां नहीं देखते हैं, वो लड़कियों को देख करके उनकी वृद्धि उद्दीपना हो रहे हैं, हो ये सब श्रीमती जी के सब परिचारिका है, ओ कितना सुंदर, हमारा तो हो जाएगा गड़बड़। इसलिए उत्तम अधिकारी बच्चों को मत, वहां पर बोला नहीं राय पत्ता गुजरात के लड़के को देखा, श्याम लास्ता लड़का है, देख कर उनको कृष्ण के स्वभाव की उद्दीपन आया, श्याम सुंदर की उद्दीपन आया, उनको पकड़ लिया लिया, और उनको क्या किया था नित्यानंद प्रभु, उनको मोर पंख लगा दी थी और पीताम्बर पहना दिया है, और उनको इतना सजा दिया, बंसी रख दी, देखकर के माँ तो मुग्ध हो गए, ओहो ऐसा भी बच्चा जगत में अभी है, ऐसा भी व्यक्ति है, उनको दिखना हुआ बंदे के भ्रम है यही वृंदावन, पहले देखिए यही है यही गोवर्धन, और नदी के मन है यही कालिंदी, और पर्वत की मन है यही गोवर्धन। तो महाप्रभु क्या उस समय क्या महाप्रभु का कल्पना कर रहे हैं ये झूठ देख रहे हैं, नहीं यहाँ बहुत विचार हुआ, एक बार वृंदावन में इसको लेकर के बहुत विचार हुआ, हमारे किसी को लोग थे हम प्रदर्शन में वहाँ थे, मैं बात चल रहा था कि महाप्रभु का भ्रम हो रहा है क्या, या महाभागवत गलत देख रहे हैं है? नहीं वो कदम कदम में सर्वत्र सावर जंगम देखे ना देखा तार मुक्ति, सर्वत्र सुयता इष्ट देवे स्फूर्ति, वो सावर जंगम उनके नजर में नहीं है, उनके नजर में आत्मदर्शन है, कैसे ये आत्मा तो प्रभु का ही है, आत्मा अनात्मा विवेक उनमें है हो चुका है, तो मध्यम अधिकार में क्या होता है समस्त तत्व ज्ञान हो जाता है, किंतु सर्वशास्त्र सुनिपुण दृष्टद्रजार उत्तम अधिकारी के सारे संसार, और शास्त्र युक्ति नहीं जाने दृढ़ श्रद्धावान मध्यम अधिकारी के महाभाग्यवान, और शास्त्र युक्ति इतना नहीं सीखा है दृढ़ श्रद्धा हो चुका है मध्यम अधिकारी है, और धीरे धीरे शास्त्र युक्ति सीख लिया ना तो वो मध्यम अधिकारी है, शास्त्र युक्ति आ गया आकर के वो क्या है और तत्व विचार करके देखते हैं, ये किसी मुद्दा देखते नहीं। उन्होंने अष्टावक्र ऋषि ने क्या कहा था, जन्म किसी दरबार में जब पहुंचे तो सौर ठहरा लगा करके ऊपर के हाथ से लग गए, तो तू क्या कर रहा है भाई, तो ये भी हाथ से लग गए, खूब हाथ से बोले अरे वो लोग फिर हाथ से लग गए, बोले देखिए यू भी हाँसता है, तो पूछते भाई क्यों हंस रहे हो, तो तुम क्यों हंस रहे हो, तो बोले हम कैसे हंसी क्यों बंद करके रखे हैं, कैसे तो आठों से टेढ़ा है गर्दन, तो कहीं गर्दन नहीं है, छाती यहाँ सामने है, और ये ऐसे टेढ़ा ऊपर आ गया, और कमर इधर आ गया, पैर कहीं एक है यहाँ एक है यहाँ, आठों अंगों से टेढ़े हैं, तो आपको देखकर कौन भी यहाँ से रहेगा, और व्यवहार फटे हुए हैं, नंगे धड़ंगे कॉफी नेट पहने हुए हैं, जनेऊ गल मिट्टी मोटी है और टोपी इतनी मोटी, और उसमें भी कैसा देखने में विकट, और बेधड़क बिना पूछे ताछे सभा के अंदर आकर बिल्कुल खड़े हो गए, तो आपको देखकर कौन नहीं हंसेगा, तो बोला आप क्यों हंस रहे हैं, तो मैं बहुत दूर से चल चल करके आया था, सुना था कि जनक ऋषि के दरबार में बड़े पंडित है महात्मा है, मैं दर्शन करने के लिए आया, तो उसमें क्या बात हो गया, बात क्या हुआ, देखता हूँ एक भी पंडित नहीं है, सब तो चामार बैठे आए हैं, हाँ मैं इतना दूर से कष्ट करके आया चामारों को देखने के लिए, अब तो सबका मुंह लटक गया चुपचाप से, बाबा इतनी बड़ी बात, इनको डर भी नहीं भय भी नहीं, ऐसे बात कर रहे हैं, निश्चित रूप में कोई होगा ऐसे है, तो आप ऐसे कैसे बोल दिया, तो मेरे चमड़े की भी क्या करता है, चमड़ा दिखता है आतंकों से टेढ़ा काला बेबे फटे हुए हैं, कोपिन पहने हुए हैं, चित्रे पतले चमारों की तरह चमड़ा की विचार करता है, गोरा काला पीला हरा सुंदर, चमड़ के अलावा कौन है, मैं बेकार आया हूँ, जनक महाराज जी ने बेकार दरबार बना रखा है, साडा खाना बना रखा है, फिर जनक महाराज जी को पकड़ ली और बताइए जवाब दीजिए मेरे पिताजी कहाँ है, आपने मेरे पिताजी को क्यों मार पड़ा, बोल क्यों मैंने तो किसी को मारा नहीं, नहीं आपने बड़े बड़े पंडितों को बुलाया शास्त्र से हराया, जो हार गए उसको पानी में डुबो दिया, अब मैं आया आपके कोई भी पंडित हो मुझसे तर्क करे और जो भी हार गया सबको मैं डुबो दूंगा पानी में, अब तो कांप गया था पंडित, अब सवा छोड़ कर जा नहीं सकते, कांपने लगे डर के मारे, अब तो मारा अब तो बचने की कोई उपाय नहीं है, एक भी पंडित अपनी बचेगा, जो जवाब दे नहीं सकता और पहले ही तो सबको हरा दिया, अब कैसे बचेगा, अब पंडित जी यार पैसा खाना राजा का ना, और किस चीज बाजी करना, अब छोटी मोटी सब हो गया, अब चिंता में घबरा गए, कांपने क्या करूं, महाराज जनक महाराज चरणों में गिरे, गिर करके ला करके अपने सिंहासन में बैठाया, सब पंडित के द्वारा चरणों की अभिषेक कराया, आरती उतारे, माला पहनाया, वस्त्र चढ़ाए रेशम की, सब कुछ किया, किंतु वो तो गड़गर गड़गर कर रहे हैं, आइए महाराज शास्त्र तो कीजिए, बोले महात्मा कृपा पूर्वक मेरे साथ यदि आप थोड़ा सा हमारे जिस कुंड में आप लोगों के पितरों की सबको मैंने डुबो दिया उस स्थान पर आप चले तो बहुत कृपा होगी, उनको बड़े मुश्किल से वहां तक ले गए, रथ में बैठा थे तो गए जाकर के बोले ये देखिए स्वर्गपुरी, इंद्र को बुलाया, इंद्र जितने पंडित लोगों को मैंने आपके पास भेजा है सबको लाओ, क्यों स्वर्गलोक में बड़ा झगड़ा चल रहा था असुरों में और देवताओं में, कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं था कि इसकी सामंजस्य कर सके, सब दोनों भोगी है, जैसे हमारे मंदिर में सपोज यदि कोई उपयुक्त तो महात्मा नहीं है तो क्या करेगा, खाने के लिए पीने के लिए बेकार बाग बतंदा करके लड़ मर करके काट करके खून राहजानी कर देगा, एक भी यदि साधु है शांत प्रशांत है तो वहां स्वर्गलोक में ऐसा रोज लड़ाई असुर में दानव में भोगों के पीछे भोगों की जो लड़ाई होता है, और किसी कह रहे तो एक समय बृहस्पति जी ने कहा तुम यदि ऐसा करो सुंदर सुंदर पंडितों को ला करके रख दो, पंडित लोग सबका समाधान कर देंगे एक मिनट में, क्यों उनमें शक्ति सामर्थ्य होता है, लाओ पंडितों को, तब इंद्र ने और प्रार्थना की जनक महाराज जी के निकट। जनक महाराज जी ने देखा जो जो बड़े बड़े पंडित सुंदर से सुंदर युद्ध सत्ता संपन्न सब पंडित वो क्या किया, शरीर से छुड़ाना पड़ेगा ही कैसे ना कैसे, शरीर तो जाएगा नहीं, मिट्टी जल जल पाप गगन सुमीरा पंचरती तो अदम शरीर, तो क्या किया शरीर को छुड़ा करके स्वर्ग भेज दिया। तो देखो जब वो अष्टवक्र ऋषि ने देखा सारे पितर लोग उनके पिताजी भी आशीर्वाद दे बेटा तुम्हारा कल्याण हो, तुमने बड़ी भारी तपस्या की, तुमने हमारे दर्शन के देवी लालस देवी जनक महाराज के दरबार तक आए, तुम जनक महाराज जी महात्मा है, तो इसलिए देखा सबको देख करके प्रणाम करके और जनक महाराज जी को प्रणाम करके उल्टा छोड़ गए। इससे बतलाया कि सर्वभूते क्या होगा कृष्ण का भाव दर्शन क्या